जय राधमा भव कुंज बिहारे,
यह प्रवचन श्रीला गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के द्वारा श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 29 श्लोक संख्या 18 पर 26 अप्रैल 2016 को चंडीगढ़ में दिया गया।
गोपी जाना बाला भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
अध्यात्मिकानुसरणम्
संकीर्तनम चे
अजवे नरयाध्यात्मिकानुसरणम् नाम संकीर्तन च मे
नाम संकीर्तन च मे
अजवेन संगेन
ध्यात्मिकानुसरणम्
संकीर्तन च मे
नाम संकीर्तन च मे
अजवेन
ध्यात्मिकानुसरणम्
च मे
नाम संकीर्तनम् च मे
अजवेन संगेन निरङ्क्रियाय
तथा
सरल आचरण से आर्य संगेन साधु पुरुषों की संगति से निरहन क्रिया अहंकार रही तथा इस प्रकार अनुवाद। भक्तों को चाहिए कि आध्यात्मिक बात ही सुने और अपने समय का सदुपयोग भगवान के पवित्र नाम के जप में करें। उसका आचरण सरल हो और ईर्ष्यालु न हो। वह सबों के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हुए भी ऐसे व्यक्तियों की संगति से बचे जो आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत नहीं है। भक्तों को चाहिए कि आध्यात्मिक बात ही सुने और अपने समय का सदुपयोग भगवान के पवित्र नाम के जप में करें। उसका आचरण सरल हो, वह ईर्ष्यालु न हो और सबों के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हुए भी ऐसे व्यक्तियों की संगति से बचे जो आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत नहीं है। तात्पर्य कृष्ण को समझते हुए
चरणामृत
आध्यात्मिक बोध में अग्रसर होने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में प्रामाणिक स्रोत से श्रवण करना होता है। आध्यात्मिक जीवन की वास्तविकता समझने के लिए कठोर अनुष्ठानों का पालन करना चाहिए और इंद्रियों को नियंत्रण में रखना चाहिए। नियंत्रण प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य अहिंसक तथा सत्यनिष्ठ बने, चोरी न करे, विषयी जीवन से दूर रहे और जीवन निर्वाह के लिए कम से कम आवश्यक वस्तुएं रखे। वह न तो आवश्यकता से अधिक भोजन करे, न आवश्यकता से अधिक साथ सामान एकत्र करे, सामान्य व्यक्तियों से वृथा वार्तालाप न करे और बिना किसी उद्देश्य के विधि विधानों का पालन न करे। केवल उन्हीं विधि विधानों का पालन करे जिनसे वास्तविक प्रगति हो सके। भगवद गीता में 18 गुण बताए गए हैं, जिनमें से एक साथी या सरलता भी है। मनुष्य को न तो गर्व करना चाहिए, न अन्य से व्यर्थ कर सम्मान करना चाहिए, ऐसे उसे अहिंसक होना चाहिए। अमानित्व अधर्मित्व अहिंसा। मनुष्य को अत्यंत सहिष्णु तथा सरल होना चाहिए, उसे गुरु बनाना चाहिए और इंद्रियों पर संयम रखना चाहिए। इसका उल्लेख यहाँ पर और भगवद गीता में भी हुआ है। उसे प्रामाणिक स्रोत से सबल करना चाहिए कि आध्यात्मिक जीवन में किस तरह प्रगति की जाए। ऐसे आदेश आचार्यों से ग्रहण करके उनको आत्मसात करना चाहिए। यहाँ पर नाम संकीर्तनाचार का विशेष उल्लेख है, अर्थात मनुष्य को भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे
का कीर्तन या तो अकेले या मिलकर करना चाहिए। भगवान चैतन्य ने आध्यात्मिक उन्नति के मूलभूत सिद्धांत के रूप में भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन पर विशेष बल दिया है। एक अन्य शब्द यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है आज वेन, जिसका अर्थ है बिना कूटनीति के। भक्त को अपने हित में कोई योजना नहीं बनानी चाहिए। निसंदेह धर्म उपदेशकों को भगवान के मिशन को पूरा करने के लिए कभी कभी समुचित मार्ग निर्देशन के अंतर्गत कुछ योजनाएं बनानी पड़ती है, किंतु जहां तक अपना हित है उसके संबंध में भक्त को सदैव कूटनीति से रहित होना चाहिए और उसे ऐसे व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए जो आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर पा रहे हैं। आर्य भी एक अन्य प्रयुक्त शब्द है। आर्य वे व्यक्ति हैं जो कृष्ण चेतना में प्रगति करने के साथ ही भौतिक समृद्धि में भी उन्नति करते हैं। आर्य तथा अनार्य या शुद्ध तथा अशुद्ध के बीच जो अंतर है वह उनके आध्यात्मिक प्रगति के स्तरों में अंतर है। ऐसे व्यक्तियों की संगति वर्जित है जो आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत नहीं है। भगवान चैतन्य का उद्देश्य था असत संग त्याग। जो लोग नाशवान वस्तुओं के प्रति अनुरक्त है ऐसे व्यक्तियों का त्याग करो। असत वह है जो भौतिक दृष्टि से अनुरक्त है, जो भगवान का भक्त नहीं है तथा स्त्रियों या भोग्य वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्त रहता है। वैष्णव दर्शन के अनुसार ऐसा व्यक्ति अप्रिय पात्र है। भक्त को अपनी कमाई पर गर्व नहीं होना चाहिए। भक्त के लक्षण है उसकी विनयशीलता तथा सहिष्णुता। भले ही वह आध्यात्मिक दृष्टि से इतना ही उन्नत क्यों न हो, वह सदैव विनीत तथा सहिष्णु बना रहता है। जैसा कि कबीरराज गोस्वामी तथा अन्य वैष्णवों ने अपने उदाहरणों द्वारा हमें शिक्षा दी है। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा थी कि मनुष्य को रास्ते की घास से भी अधिक विनीत तथा वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु होना चाहिए। उसे न तो गर्व करना चाहिए, न झूठे खुला रहना चाहिए। इस प्रकार वह आध्यात्मिक जीवन में निश्चित रूप से प्रगति कर सकेगा।
हरे कृष्ण
हरे
ध्यान से सुना आपने
ओम ज्ञान श्री कृष्ण चैतन्य परोनित्यानंद शिवासादी और भक्त हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे
अध्यात्म गणेशवरम नाम संकीर्तन चाबे अजवेन्द्रय संगीता प्रिया यात्रा ये बड़े सुंदर श्लोक का उच्चारण भगवान कपिल देव कर रहे हैं। भगवान के अवतारों का वर्णन शास्त्र में प्राप्त होता है, तो शास्त्र के आधार पर हम निर्णय करते हैं कौन प्रमाणिक अवतार है और कौन प्रमाणिक अवतार नहीं है। इस तीसरे स्थान में अब देवाभूति और कपिल देव देखो आप में से कितने भक्तों ने इस स्तर पढ़ा है। बस सर इस स्तर नहीं पढ़ा तो दूसरी बात है आप सबको देवभूति के पति का नाम क्या था और देवभूति को पता था मेरा बेटा जो है भगवान का अवतार है, इसलिए देवभूति ने उनसे कहा कि तुम मेरे आध्यात्मिक नेत्र हो, मुझे ध्यान दीजिएगा। और जब बेटे ने सुना माता का प्रश्न तो बड़े प्रसन्न हो गए थे। जैसे जब श्रीदेव गोस्वामी जी ने पूछा सुना परीक्षित महाराज का प्रश्न, जिस व्यक्ति का अंत आने वाला है उसे क्या करना चाहिए, बड़े प्रसन्न हुआ क्योंकि उन्हें पता था इसके उत्तर से पूरा विश्व लाभ उठाएगा। इस अध्याय में इस अध्याय के आरंभ में होगी ने कहा है कि आपने संख्य योग तो सिखा दिया है, सब योग का भी निर्णय यह है भक्ति योग। तब मैं ये चाहती हूँ कि तुम मुझे शिक्षा दो कि भक्ति योग कैसे पालन किया जा सकता है। और इस पिछले अध्याय में अब भक्ति योग की महिमा सुन बैठे हो, तो देवभूति का प्रश्न था मुझे भक्ति योग के विषय में शिक्षा दी थी। खास करके उन्होंने कहा जो जन्म मृत्यु का बंधन है इसमें कष्ट ही कष्ट है। अगर कोई व्यक्ति ये सोचे कि भौतिक ध्येय के द्वारा भौतिक सुख अनुभव कर सकते हो तो भारी भ्रम है। तो देवभूति ने क्या पूछा, उन्होंने कहा कि मुझे वो ज्ञान दीजिए जिसके द्वारा जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा प्राप्त हो सकता है। आगे उन्होंने कहा मुझे वो ज्ञान दीजिए, मेरे समय के विषय में ध्यान दीजिए। भगवद गीता में आप पढ़ते हो कि समय भगवान का प्रतिनिधि है, समय हर चीज को नष्ट कर देता है। आज आप अधिक खूबसूरत है जवान है तो समय ये देखेगा कि आप ज्यादा देर जवान मत रहो, 10-20-30-40-50 साल आज आपका कंठ मधुर है, समय देखेगा ये कंठ खड़ा तो समय हर चीज को नष्ट कर देती है। तो देवभूति ने अनेक प्रश्न पूछे भक्ति योग के विषय में। इस अध्याय के आरंभ में आप भगवत में देखते हो भगवान के भक्त बार बार प्रश्न पूछ रहे हैं। असल में प्रश्न पूछ रहे हैं हम सबकी भलाई के लिए। और कपिलदेव भगवान इस श्लोक का उच्चारण भगवान कपिलदेव ने किया है और कपिलदेव भगवान अभी माता के प्रश्नों का उत्तर दे रही है। माता का क्या था प्रश्न? क्या था?
समय का।
और क्या? भक्ति योग का। माँ ने कहा कि आपने मुझे संघ योग का सिद्धांत तो दे दिया है जिसका निर्णय में ये है भक्ति योग। मैं तुमसे ये जानना चाहती हूँ भक्ति योग की महिमा। तो इस अध्याय में और गहराई के साथ भक्ति योग की महिमा का गुणगान किया जा रहा है। भगवान क्या कहते हैं? मेरे भगवान स्वयं भगवान है। और जैसे आप जानते हो भगवान की वाणी में कोई दोष नहीं, कोई अपूर्णता नहीं, कोई कमी नहीं। साधारण व्यक्ति के ज्ञान में अनेक प्रकार के दोष होते हैं। इसीलिए ये जो वैदिक साहित्य है इसका एक और नाम है सनातन धर्म, सनातन शिक्षा, जो हमेशा इसका लाभ उठा सकते हो। हम 10 नाम अपराधों का वर्णन करते हैं। 10 नाम अपराध में चौथा अपराध कौन सा है? हमारे कई हिंदू भाई बहन भी हैं जो कहते हैं ये वैदिक शास्त्र इज आउटडेटेड, इनका आज के आधुनिक युग में कोई स्थान नहीं। प्रभुपाद जी ने ये साबित करके बताया है वैदिक शास्त्र ज्ञान आज के आधुनिक वातावरण में भी किया जा सकता है। तो भगवान अभी माता को भक्ति योग के विषय में ज्ञान दे रहे हैं और इस विषय में क्या कह रहे हैं कि ज्ञानी बात को सुने और अपने समय का भगवान को सना होना चाहिए। तो सबसे पहले कपिल देव भगवान क्या कह रहे हैं कि तुम्हें भगवान के गुणों के विषय में सुनना चाहिए और सभी का उपयोग करना चाहिए भगवान के वेद नाम को सुनने में। सभी के विषय में शास्त्र में काफी वर्णन है। जैसे मैं कहा समय है भगवान के प्रति और समय हम दुरुपयोग कर सकते हैं, दुरुपयोग कर सकते हैं। जिन के पंडित जिन्होंने हमें शिक्षा दी है, जिनके पंडित प्रधानमंत्री थे, चंद्र को मौर्य थे, कभी ज्ञानी थे, राजा से कोई सुविधा स्वीकार नहीं की। उनकी जो शिक्षा है उन्हें वैदिक शास्त्र के समान आदर दिया जाता है। इस समय के पंडित कहते हैं कशाना एक और पीड़ा सबा अचानक होती हुई है। आप एक पद का भी दुरुपयोग करोगे तो सारे विश्व के धन से उसे वापस प्राप्त नहीं कर सकोगे। मान लो आपने जीवन का 20-25 साल बिता दिया है बहुत आप तो ये समय वापस ले आओ ला सकते हो। इसलिए बार बार इस विषय का वर्णन किया जाता है। समय का उपयोग करो भगवत में आप महाराज के साथ महाराज मैंने एक समय को सिद्ध किया था असुरों के साथ युद्ध करने में, जिसके कारण देवताओं ने विजय प्राप्त की। देवता ने उनसे पूछा संत माया भारी है, मांगो क्या वर हम दे सकते हैं। मुझे ये बताइए मेरी जिंदगी में कितना समय बच गया है। ये केवल एक पल मुझे बोली जगह ध्यान दो जहां मैं भगवान के चरण कमल का स्मरण करते हुए जीवन बच गया। ये होता है भक्त का भाव। भक्त का ये भाव होना चाहिए कि हमारे जीवन में केवल एक पल बच गया है। अगर आप सोचोगे अभी हम 40 साल के हैं और 40 साल बच गए हैं, खेलने कूदने दो, उसे कोई भरोसा नहीं। इसलिए ठाकुर भक्तगणी कहते हैं डिवोटी ऑलवेज पेसिमिस्टिक। भक्त हमेशा डालता है भौतिक संसार में कोई अति सुख नहीं। तो कृपया देव कह रहे हैं सदा आध्यात्मिक विषयों का श्रवण करो और जीवों द्वारा भगवान का गुण करो। इसे क्या कहते हैं दूसरी भाषा में श्रवण और श्रवण और कीर्तनम। ये सबसे महत्वपूर्ण सेवा है। कई बार भक्त पूछते हैं क्या सेवा कर सकते हैं और हम अक्सर कहते हैं शरणम कीर्तनम को सुधारो और पढ़ाओ। कोई इतना नहीं पढ़ाओ कि कोई सेवा नहीं कर बाबा जी ने कहा है ये है भजन नंदी कृष्ण नंदी। दो प्रकार के भक्त होते हैं। भजन नंदी भक्त केवल अपने स्वार्थ का सोचते हैं, दिन रात यही भजन की चिंता रहती है। तो घोषणी प्रकार के श्रेणी के भक्त हैं वो शरण के दिन में भी रुचि लेते हैं। ये भी सोचते हैं ये जो बच्ची तरफ रहे हैं उनका उद्धार कैसे किया जाए। तो बाबा जी ने एक समय ये स्थापित किया है कि घोषणी भक्त भजन नंदी से लाखों गुना ज्यादा आगे है। घोषणी भक्त अपने स्वार का सोचता है और दूसरों का। तो श्रवण कीर्तना ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो प्रहलाद महाराज के पिता ने बेटे को गोद में बिठाकर पूछा प्रहलाद के दो अध्यापक थे संगरमण का। तो हिरण्यकशिपु ने उन्हें डांटा था मेरे बेटे को कौन इतने ज्ञान दे रहा है, तुम्हें अपनी सावधानी से नहीं देख रहे। और उन्होंने कहा संदर्भ कर रहे हमें ऐसे ही मत डांटो, हम ब्राह्मण हैं, हमें खुद ही समझ आता आपके बेटे को ज्ञान ज्ञान से प्राप्त हो रहा है। ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया था माता जी। जब पिता ने पूछा बताओ सब सब्जेक्ट्स में कौन सा सबसे प्रसिद्ध ज्ञान था, उन्होंने क्या कहा ज्ञान दे दिया। तो श्रवणम और कीर्तनम आप देखोगे कि इस विषय का वर्णन भागवतम के लगभग हर श्लोक के साथ में है। भगवत में 18,000 श्लोक है, 12 स्कंध है। जिन्हें की एक ही श्लोक है यहाँ की विषय पर बल दिया जा रहा है। आप अगर कीर्ति करो तब तो हजारों श्लोक मिलेंगे और हजारों तात्पर्य मिलेंगे और हर तात्पर्य में इस विषय की चर्चा होती है। क्यों? यहाँ बड़े ठीक हैं, हम भूल जाते हैं इसकी आवश्यकता। व्यास देवी को पता रहा है, उन्होंने बार बार नहीं याद दिला रहे। तो श्रवण कीर्तनम हमें सुनना चाहिए मानिक भक्तों के माध्यम से। ये नहीं कि हमने भजन सुनना है तो मनु के लोटा रख के बता रहे मनु के लोटा के द्वारा भजन सुनिए बेशरों के दिलों को इसलिए तात्पर्य में प्रभु जी कहते हैं शरण के दिलों प्रमाणिक भक्तों के माध्यम से ये नहीं कोई मांस खाता शराब पीता और फिर पैसे कमाने भजन कर देता हमें शरण के दिलों करना चाहिए प्रमाणिक भक्तों के माध्यम से प्रमाणिक भक्तों के संगत में रहोगे तो आपको शुद्ध ज्ञान भी मिलेगा आगे क्या कहा गया है कि हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड और सरल होना चाहिए सादा जीवन ऊंचा विचार स्ट्रेट फॉरवर्ड में जीवन क्या बोलते हैं
स्पष्ट
तो यहाँ लिखा गया है स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब चापलूसी रहे चापलूसी से रहे बहुत एक संसार में सभी चापलूसी करते हैं तो यहाँ भक्तों को खास आदेश दिया जा रहा है स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंपल सादा जीवन भक्तों का सिद्धांत है सादा जीवन ऊंचा विचार और बौद्धिक समाज का क्या लक्ष्य है ऊंचा जीवन सादा विचार और ऊंचा जीवन कर्जा लो जेब काटो धोखा दो दूर खोलो पर अच्छा मकान अच्छी मोटर वगैरह और बुद्धि पशु जैसे यही चिंता है खाना पीना सोना वो भी तो यह कहा जा रहा है कृपिना देव भगवान के द्वारा कि भक्त चापलूसी रहित होना चाहिए और इस विषय में भगवद गीता में भगवान जी की तपस्या की चर्चा करते हैं भगवान हमें उपदेश देते हैं जी की क्या तपस्या है श्री की क्या है और मन की क्या है और शरीर की जीव की तपस्या के विषय में कहते हैं जीव द्वारा सत्य का उच्चारण करो तो यहाँ वही भाव प्रस्तुत किया जा रहा है कहा जा रहा है भक्तों स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए और सादा सादा जीवन सादा जीवन बिताओगे तो सरलता से भक्ति की विधियों का पालन कर सकोगे अगर हमारे मन में ये भाव रहे कि हमें पड़ोसी से एक कदम आगे बढ़ना है इंग्लिश में कहते हैं Staying with Jodhism. So, Dhyanik Jeevan ka paalan karte na jayega. So, bhakto, stay forward as sadha hai. Dvesh se bacho. Isha, dvesh. Isha, dvesh ke karan, bhakti nashta jati hai. Chaitanya Charitamrita mein kai kahaniyan hai. Is vishay par. एक लीला है चैतन्य महाप्रभु की अमोघा भक्त के साथ अमोघा सर्वोपरचार्य की जमात है सर्वोपरचार्य उस समय के बड़े प्रसिद्ध मायावादी भक्त है चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा से वो ऊंचे कोटि के वैष्णव बन गए और एक समय उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को निमंत्रण दिया था प्रसाद स्वीकार करने के लिए तो चैतन्य महाप्रभु किसी शहर में जा देते हैं भक्त उन्हें बुला देते हैं बुला देते दस दिन के महाप्रभु सौदा करके दो दिन जाते थे तो मोगाराज के हृदय में सदा द्वेष था चैतन्य महाप्रभु के प्रति आगे भगवान और एक दिन महाप्रभु प्रसाद खा रहे थे मोगा ने अंदर आके देख लिया इतना बड़ा भंडारा उनके सामने तो कहने लगे देखो भोगी सन्यासी इतना भंडारा खा रहा है थोड़ी देर बाद इसे महाप्रभु को जब पता लगा कि यह मौका बढ़ने वाला है, उसे देखने में मां प्रभु ने कहा जब तक ईश्वर दवेश मन हृदय में रहेगा भगवान हम राजमान नहीं होंगे। जैसे आप गंदे कचरे की डब्बी के पास में बैठकर प्रसाद खाना अच्छा लगता है, आपको कहा जाए कचरे की डब्बे के साथ पास। इसी प्रकार भगवान को भी पसंद नहीं आता जब हमारे हृदय में प्रवेश। यह कहा जा रहा है किसी के प्रति द्वेष ईर्ष्या का भाव मत रखो। भौतिक समाज में हम जब देखते हैं किसी में कोई योग्यता है जो हमारे में नहीं है तो ईर्ष्या हो जाती है। सच बात, हम कुछ न कुछ भावना से ढूंढते हैं पर ईर्ष्या द्वेष से बचना है। और ईर्ष्या द्वेष से बच सकते हो केवल अगर आध्यात्मिक ज्ञान हो। आगे आ जा रहा है सबके प्रति मित्रता का भाव। तो भक्त जो है सूलम सर्वा धैना भगवान के पीड़े तीसरे स्थान में भक्तों के लक्षणों का वर्णन करते हैं। देवभूति ने प्रश्न पूछा था ये बताओ कि कैसे मुझे छुटकारा प्राप्त हो सकता है और इस संसार से। बेटे ने कहा संत भक्तियों के पालन के द्वारा। आगे माता ने पूछा भक्तियों का ज्ञान कहां से प्राप्त होगा। बेटे ने कहा संतों की संगत में आकर। आगे मां ने पूछा संतों को मैं पहचानूं कैसे, संत की क्या पहचान है। तो संत के प्रचार के विषय में भगवान के पीला देव ने एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक सुनाया, कौन जानता है। सफर ने सुना कहा सुना सर्वदेना साधु तो सुना सर्वभूतना। जो भक्त है वो हरे का मित्र है। तो यहां आप कह सकते हो भक्त तो हरे का मित्र है तो आप हरे क्यों कह रहे हो वो भगवान की संगत से दूर रहो, वो भी तो हमारे मित्र है। तो भगवान के प्रिय देव इस श्लोक में और थोड़े गहराई के साथ इसी विषय पर शिक्षा दे रहे। भगवान कहते हैं सबके प्रति मित्रता का भाव रखो पर अभक्त की संगत से दूर रहो। मित्रता का भाव सबके प्रति रखो। मित्रता का भाव क्या है, भौतिक संसार में जब आप मित्रता का भाव के विषय में चर्चा करते हो तो क्या समझा जाता है। हम एक दूसरे का सहयोग दें इन नेतृत्व के कार्य में। सच बात है और एक संसार में संबंध जुड़े रहते हैं जब तक हम एक दूसरे का सहयोग दें। एक बहुत बड़ा एक हमारा बड़ा पुराना नंबर मेरे को नहीं आया था दिल्ली में एक महीने पहले। एक समय था बहुत बड़ा व्यापारी था कुछ एक साल का रहता तो पिछले एक साल में मुझे काफी घाटा आया। तो कह रहा था मुझे मेरे बेटे भी छोड़कर चले गए मुझे बेटे बाप के साथ रह रहे थे कि बाप की अच्छी आमदन थी। जब बाप ने घाटा खाया तो बेटे ने भी कहा आमदा धंधा तो ये एक उदाहरण चाहे पति पति माँ बाप जो भी रिश्ते हो। भौतिक संसार में मित्रता का भाव का अर्थ है हम एक दूसरे को सहयोग दें के बारे में। पर आध्यात्मिक क्षेत्र में शास्त्र में जब मित्रता का भाव का वर्णन किया जाता है उसका क्या हमें एक दूसरे का सहयोग दे भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने के। नारद मुनि भागवतम के 34 स्कंद में ध्रुव महाराज को शिक्षा देते हैं कि किस प्रकार से हमारा व्यवहार होना चाहिए अलग अलग श्रेणी के व्यक्तियों से। नारद मुनि कहते हैं कि जब आप अपने से ज्यादा उन्नत भक्तों को मिलो तो हमें क्या भाव प्रकट करना चाहिए, प्रसन्नता का भाव हमारे प्रसन्नता होनी चाहिए। हम उत्तम कोटि के भक्तों को मिल रहे हैं उनसे हमें शिक्षा मिलेगी जिसके आधार पर हम जीवन को सरल बना सकते। जब आप अपने समान के भक्त को मिलो तो क्या भाव प्रकट होना चाहिए, मित्रता का भाव। मित्रता का भाव क्या होता है, एक दूसरे का सहयोग देना आध्यात्मिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक सहयोग में। और वैष्णव समाज में मित्रता का भाव कैसे प्रकट होता है, अनेक साल जाते हैं प्रचार करने के लिए, एक साल बैठ कर जाप कर देने सब आते हैं, उन्हें भी जब मौका मिले उन्हें सुबह के समय मंदिर में आना चाहे भक्त के साथ बैठ कर जाप करने के साथ बैठ कर सुबह के समय जाप कर उसका बड़ा गहरा प्रभाव रहता है जिस कारण से तेजी से आप जिंदगी में आप दूर कर सकोगे। जितने ध्यान से हम जाप करेंगे उतनी तेजी के साथ आगे बढ़ पाएंगे। तो जब आप अपने समान के व्यक्ति को मिलो क्या भाव होना चाहिए, देहाती क्षेत्र में मित्रता का भाव का अर्थ है हम मिलकर जाप करें, कीर्तन में उपस्थित हों, कीर्तन में नाचें, एक साथ सेवा करें। प्रशान कोई भी सेवा प्रचार करने में एक साथ जाए, हरि नाम में भी जाए, ये है मित्रता का भाव। अब हम हरि नाम में जाते कभी से कितने भक्त हो वही नाम मिल जाते हो, मुझे लगता है कि हमारे जो गृहस्थ भक्त है वो सोचते हैं हमें छूट है इस सेवा से। बॉम्बे में अमेरिका में हमारे जो गृहस्थ भक्त हैं हर शनिवार को वही नाम मिल जाते हैं। अमेरिका में कैनेडा विदेशों में 5 दिन हफ्ते में काम करना पड़ता है, 2 दिन छुट्टी होती है। तो अक्सर हमारे जो गृहस्थल होते हैं वो सैटरडे संडे भाई नाम में जाते हैं और बड़े बड़े आपने सिलिकॉन वैली का नाम सुना होगा, सुना है सिलिकॉन वैली है सैन होजे में, ये सारी बड़ी कंपनी का हेडक्वार्टर है, गूगल फेसबुक सारी टेक्नोलॉजी कंपनी। तो इसमें कई भक्त हैं जो कि इंडस्ट्री में काम करते हैं। और शनिवार इतवार को वो हरिना में जाते हैं और घर घर जाकर बुक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं साल साल। तो ये सब बड़े ऊंची पोजिशन में है, 1 करोड़ 2-1.5 करोड़ साल में कमाते हैं, जाते हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो आप भक्तों को भी जरा प्रचार का उत्साह बढ़ाना चाहिए। लगता है कि चंडीगढ़ में लोग ज्यादा सरकारी नौकरी करते हैं, गांव में भक्ति में जुड़ते हैं तो वही भाव रहता है, और जब भक्ति में जुड़े हैं व्यापारी भावना चाहिए प्रचार का है कि नहीं, तो ये हरिनाम हफ्ते में कितनी बार हरिनाम करते हैं? हम हरिनाम बढ़ाएंगे, आप लोग हरिनाम में आओगे, अगर हरिनाम बढ़ाएंगे तो कौन कौन आएंगे आप में से? जैसे भगवान की कृपा चाहिए हमने हरिनाम में जरूर जाना चाहिए। तो यहाँ कहा जा रहा है जब अपने समाज की व्यक्ति को मिलो क्या भाव होना चाहिए, और जब आपसे कम उन्नत के भक्तों को मिलो उसे क्या भाव होना चाहिए? दया का भाव, दया का भाव कारण है ये सोचना कि किस प्रकार से हम लोगों को भगवान का ज्ञान दे सकिए। तो इस श्लोक में बहुत ही संदेश दिया जा रहा है, साथ में ये कहा जा रहा है कि परम भक्तों की संगत से जुड़ा रहो, संगत त्याग क्या कारण है इस श्लोक में और अनेक श्लोकों में ये कहा जाता है कि भक्तों की संगत से बचो, क्या कारण है कौन बताएगा? क्या कारण है, क्या कारण है कि शास्त्र में बार बार कहा जाता है भगवान की संगत से दूर रहो या उतना ही रखो जितना क्या आवश्यक हो, क्या कारण है? संगत का प्रभाव पड़ता है, अक्सर भक्तों के पीछे में आप पढ़ते हो उनकी रुचि है केवल जैसे कार्य तो उनकी संगत में रहोगे उनका सारा यही प्रयास रहेगा कि आपको विकसित करो। कई बार आप लोगों को मिलते हो गए जो कहते हैं भक्ति की क्या जल्दी है क्या आवश्यकता है, तो इसलिए जहां तक हो सके हमें भक्तों की संगत में रहने का प्रयास करना चाहिए। आगे इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभा जी ने काफी लंबा तात्पर्य दिया है, डेढ़ पेज का तात्पर्य, जैसे आपने सुना था हर लाइन में प्रभा जी अनेक महत्वपूर्ण विषयों की चर्चा कर रहे हैं। तो प्रभा जी कह रहे हैं अगर आप ये इच्छा रखते हो या भक्ति में आगे बढ़ो तो ये आवश्यक है या प्रमाणित प्रतिनिधियों द्वारा श्रवण करो। अगर आपकी इच्छा है हमें नाम के लिए दीक्षा देंगे, हम तो आगे नहीं बढ़ना चाहते, हम तो सारी दुनिया दीक्षा लेती है हमें नहीं देखा। और दीक्षा का जो खास महत्व है भागवत प्रेम अनुकूल करना वो हमारा लक्ष्य नहीं है, नियमों का पालन करने की जरूरत नहीं है, आपको फ्री छूट है। पर यह तात्पर्य में प्रभु जी कह रहे हैं कि अगर आप भक्ति में आगे उन्नत भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हो प्रमाणित भक्तों द्वारा सुनो, और भक्ति में आगे बढ़ने के लिए प्रभु जी कह रहे हैं यहाँ भक्ति की विधियां हैं उनका भी पालन करो। जैसे आप भक्ति रसम का सिंधु पढ़ते हो, आप में से कितने भक्तों ने भक्ति रसम का सिंधु कहने का डिवोशन पढ़ा है? बहुत कम भक्तों ने पढ़ा। तो भक्ति रसम का सिंधु की रचना रूपा गोस्वामी जी ने की है, और रूपा गोस्वामी जी ने हमें अनेक प्रसिद्ध ग्रंथ दिए हैं। एक समय रूप और सनातन गोस्वामी उस समय के बड़े प्रसिद्ध राजा के राज्य का शासन कर रहे थे, और रूप गोस्वामी की रुचि थी महाप्रभु की सेवा में जुड़ रहा हूं। महाप्रभु ने उन्हें आदेश दिया, वृंदावन जाओ, उन स्थान को खोजो जहां के भगवान ने अपने जीव लीला प्रकट की थी। जैसे आज आप वृंदावन जाते हो आपको पता रहता है यहाँ भगवान ने ये लीला की, यहाँ ये लीला की, क्यों और कैसे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु उनके भक्तों ने प्रयास करके उन स्थानों को खोज लिया है जहाँ की भगवान ने अपनी दिव्य लीला प्रकट की। ये एक आदेश है रूप गोस्वामी के महाप्रभु का, उन स्थानों को खोजो जहाँ भगवान ने अपनी लीला प्रकट की। फिर दूसरा आदेश था भक्ति की शिक्षा का पालन करो ग्रंथों के माध्यम से। तो इस आदेश के अनुसार रूप गोस्वामी जी ने हमें अनेक प्रसिद्ध ग्रंथ दिए हैं, जिनमें दो ग्रंथ हैं जिनका अनुवाद प्रभुपाद जी ने किया है। कौन से दो ग्रंथ हैं? और उपदेश में तीसरा था मंदिरों का निर्माण करने के लिए। वृंदावन के कई मंदिर थे मुसलमानों के अत्याचार के कारण नष्ट हो गए थे। फिर गोस्वामी ने गोस्वामी वहां जाकर फिर फिर से मंदिरों का निर्माण किया। तो भक्ति रस अमृत सिंधु में अनेक नियम है, यही भक्ति रस अमृत सिंधु को प्रकाशित किया है नेचर डिवोशन के नाम पर, और इसमें अनेक नियम है। तो कई बार सुनने में आता है इसका मेरे तो बहुत से नियम है, बहुत से बदनाम है। तो पहले ही बोल देते हैं बाकी संस्था में दीक्षा जी तो एक मिनट में हो जाती है, इसका हमें दो तीन चार साल लगते हैं। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं सब शिक्षा और शास्त्र पसंद। तो यहाँ कहा जा रहा है कि भक्ति की विधियों का पालन करना चाहिए। भक्ति की विधियों का पालन करोगे, शरण कीर्तन करोगे, तो फिर मन बुद्धि इंद्रियों को वश में कर पाओगे। नहीं तो मन बुद्धि इंद्रियों को वश में करना बड़ा कठिन है। देवी चकुला मामाई मामाई भगवान स्वयं कहते हैं मेरी माया का विरोध करना बहुत कठिन है, पर जो मेरी शरण में आए, शरण में आने का अर्थ क्या है, आदेश का पालन करना, विधियों का पालन करना, वो फिर मन बुद्धि इंद्रियों को वश में ला सके। तो तात्पर्य प्रभु जी कह रहे हैं कि हमें सत्य का उच्चारण करना चाहिए, अध्यात्मिक जीवन में ये होना चाहिए हमारा। पर मान लो आप व्यापार करते हो और आप अपने ग्राहक को कहते हो तुम्हारे से मैं कोई नफा नहीं बना रहा, खास छूट दे रहा हूं। ये बाबा जी गीता में कहते हैं ये व्यापारी का आशा है, पर वैसे एक दूसरे के व्यवहार में हमें सत्य को जान करना चाहिए। ये तात्पर्य में प्रभा जी ने एक महत्वपूर्ण विषय की चर्चा की, चोरी करने से बचो। आज के वातावरण में सभी चोरी करना चाहते हैं, पर चोरी से बचो। ऐसा हो ऐसा नियमों के अनुसार रहो और उतना ही प्रसाद खाओ जितना की आवश्यक हो। भगवान गीता में कहते हैं जो व्यक्ति भोग लगाए बिना खाए क्या खाए, केवल पाप करे खाओ तो केवल कृष्ण। तो जलपा से बचो, रूप गोस्वामी जी ने उपदेश में हमें शिक्षा दी है भक्ति कैसे बढ़ सकती है, भक्ति कैसे नष्ट हो सकती है। और इस विषय में रूप गोस्वामी जी क्या कहते हैं, हत्या प्रश्न त्या संघर्षात होता. यहाँ प्रभाती प्रजापा की चर्चा करना है और जो भक्ति नियम है इनका पालन करने के पीछे जो भाव है वो हमें समझना चाहिए. जैसा मंगल आरती में आते हैं, गुरु पूजा करते हैं, तुलसी पूजा करते हैं, चार नियमों का पालन करते हैं, उनकी में जो भाव है, सिद्धांत है, वो भी हमें समझना चाहिए. ये आवश्यक है. और आगे प्रभु जी और अहंकार से बचो. अहंकार हमें अहंकार हमारा शत्रु है. और भक्तिनाथ ठाकुर और हमारे महान संतों ने अपनी रचनाओं में इस विषय का वर्णन पार्वती है. भौतिक समाज में अहंकार लोगों में रहता है. लोग सोचते हैं पैसे से बोल रहे आधुनिक क्षेत्र में क्या है उद्देश्य नम्रता अभाव शरणागति. आपने सुना है उस शरणागति में भक्ति राम ठाकुर हमें उपदेश देते हैं भगवान के शरणागत कैसे होना चाहिए. वो इस विषय में कहते हैं अपने आप को डेस्टिट्यूट वर्थलेस भगवान की खास नहीं है. क्या समझो या कोई योग्यता नहीं. और हमारी ना माना देना क्या आदर दो ये नहीं ऐसे रहता है. अहंकार से बचो और आदर की भी मदद करो और अहिंसा का पालन करो. अहिंसा का अर्थ है किसी को कष्ट नहीं देना. आजकल आपको शायद पता हो बुद्धिज्म का फैशन हो गया. हॉलीवुड के कई कुछ भी कलाकार बुद्धिस्ट बन गए और भारत में भी काफी लोग बुद्धिस्ट बन रहे हैं और कई धनी खानदान के लोग भी बुद्धिस्ट बन रहे हैं. बुद्धा का जो सिद्धांत है असली वो हमें समझ नहीं आ रहा. बुद्धा ने अहिंसा का प्रचार किया. किसी को कष्ट नहीं देना. राजद्रोही जो बुद्धे से सब कुछ खा लेते. वर्मा भी जाता हूँ और अजीब विषय हूँ धर्म वर्णों में एक शहर में हमारा मंदिर है. एक शहर में बिल्कुल सामने एक बुद्धिस्ट मंदिर है. वर्णों में एक खूबी है कि कोने कोने में बुद्धिस्ट मंदिर है और 3 साल के बच्चे हमको देखेंगे बाल नहीं और उनके धोती कुर्ते में बसों में भी सीट रिजर्व रहती है मॉन्क्स के लिए. पर सब मांस खाते हैं. जो अपना मंदिर है सामने मंदिर पुलिस का मंदिर है उनके वहां से मांस की बदबू आते रहती है. तो अगर आपने बुद्धिस्ट बनना है तो बुद्धा जी की जो असली शिक्षा थी उसका पालन करें. तो जो भक्त हैं वो अहिंसा का पालन करते हैं. किसी को कष्ट नहीं देना. और इस विषय में आप भागवतम के तीसरे पांचवे स्कंद में जन भान की कथा पढ़ते हो, जिसमें हम देखते हो कि जय बाला जब चल रहे थे बड़े ध्यान से अपने पैर को रखते थे। ये भाव था किसी चीटी पर भी कष्ट नहीं, उसको कष्ट नहीं आए। तो भक्त जो है अहिंसा का पालन करता है और शासन से शिक्षा प्राप्त करता है शासन के आधार पर। तो भक्त को आगे प्रबंध कहते हैं, भक्त को ऐसी योजना बनानी चाहिए जिसके द्वारा भक्ति में आगे बढ़ सके। चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को उपदेश दिया था भगवान के शरणागत कैसे हो सकते हैं, और इस विषय में सबसे पहले उन्होंने क्या कहा, जो भक्ति के लिए अनुकूल है उसे स्वीकार करो और जो भक्ति के प्रतिकूल है उसे क्या करो। तो यही भाव यहां भी प्रस्तुत किया जा रहा है कि जो भक्ति के अनुकूल है उसे स्वीकार करो। भक्त को योजना बनानी चाहिए तो भगवान के शरणागत कैसे हो सकता है। तो हमारे शास्त्रों में और आचार्यों के द्वारा हर विषय का ज्ञान है हमें, केवल आवश्यक है हमें ज्ञान का लाभ उठाएं, और ये संभव है साधु संगत के माध्यम से। साधु संगत सर्वशास्त्र है, जैसे मैं कहा था आदर में देवभूति ने अनेक प्रश्न पूछे थे पुत्र से, तो बेटे ने कहा भक्ति के पालन के लिए साधु संगत होता आवश्यक है। तो आप कहते थे तो भक्तों के संग में हो, भक्तों के गुणों को देखो, मधुमक्खी जैसे नहीं, मधुमक्खी एक फूल से दूसरे फूल जाती है थोड़ा सा शहद, मक्खी जो है केवल अंधे सांस भी खोज रहे हैं। तो अगर हम भक्तों के संग में रहें और गुणों को देखें तो क्या परिणाम होगा, संबंध श्लोक में कपिल देव भगवान बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा दे रहे और तात्पर्य में प्रबंधी में और गहराई के साथ इन विषयों की चर्चा की है। तो हमें शास्त्र को ध्यान से पढ़ना चाहिए। मैंने आया भक्तों से दो तीन प्रश्न पूछे थे जिसके उत्तर से मुझे लगा कि हम लोग ज्यादा नहीं पढ़ते किताबों को। आप में से कितने भक्तों जो भगवद गीता को रोज पढ़ते हो, और कितने भक्त जो भगवत को रोज पढ़ते हो या मंदिर। एक निवेदन है भक्तों से, थोड़ा समय बढ़ाइए और पढ़िए। कितने भक्तों जिनकी घरों में भगवतम का सेट है, मेरी बात पे सबसे पहले हम सब जिनके पास भगवतम का सेट नहीं है घर में भगवतम का सेट रखना चाहिए। क्या कह रहे हैं सेट को रखोगे पढ़ने के लिए। शास्त्रों का अध्ययन बहुत ही आवश्यक है। भगवत अगर सुनेंगे तो माया दूर होगी। तो माया का वातावरण बड़ा तेज है, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने लेक्चर ले ली इस सर्व पहले माया का विरोध कर पड़ी। माया का विरोध हो सकता है अगर हम दुनिया का लाभ और प्रभुपाद जी की कृपा से। वहां पर अनेक ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों को हमें पढ़ना चाहिए, गीता पढ़ना चाहिए, भगवान पढ़ना चाहिए। तो पढ़ेंगे तो अज्ञानता दूर होगी। प्रभुपाद जी ने एक समय कहा हमें किसी विषय पर रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सारा रिसर्च हमारे लिए व्यास देव ने कर दिया। व्यास देव हमारे आचार्यों ने सारा रिसर्च कर दिया है। शास्त्रों ने हमें यह ज्ञान दिया, हमें केवल इसका लाभ उठाना है। लाभ कैसे उठाओगे? सुनोगे और पढ़ोगे, फिर लाभ उठा सकोगे। अगर आप पढ़ोगे नहीं, जाप नहीं करोगे, भक्तों के संग में नहीं रहोगे, सेवा नहीं करोगे, जब हम हरि नाम का उच्चारण करते हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, क्या हमें क्या दीजिए?
सेवा,
सेवा, सेवा। वही सेवा का मौका केवल आगे शरीर करते हैं। तो आप जैसे जानते हो कि ये सब बड़ा खास साल है, इसको क्योंकि हम इस साल सुवर्ण जयंती मना रहे हैं। 50 साल पूर्व प्रभुपाद जी ने पहले इसको केंद्र की स्थापना की थी। कौन से शहर में?
न्यूयॉर्क में।
कौन सी तारीख को?
11 जुलाई
को इसको को संस्था के रूप में रजिस्टर किया था। पहला केंद्र खोला था न्यूयॉर्क में। प्रभुपाद के प्रतिदिन के प्रयास है लगभग 650 मुंडन है सारे विश्व के हर कोने में आज मंगल है। कुछ दिन पहले हम कुंभ मेला में थे उज्जैन में और सारी स्नान कर रहे थे और हम लोग कीर्तन मंडली में जा रहे थे सारी स्नान के लिए। लगभग 6 घंटे की यात्रा थी, इतने लोग थे। तो हमारे अफ्रीका में एक छोटा देश है घाना, छोटा देश है भारत, वहां के पास 30 घर इतना सुंदर कीर्तन कर रहे थे 6 घंटे के लगातार कीर्तन कर रहे थे। सब इतने प्रभावित हो गए थे। तो चैतन्य महाप्रभु जी की भविष्यवाणी थी विश्व के हर कोने में क्या हरि नाम हर जगह पहुंचता। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से प्रभुपाद के प्रतिनिधि के प्रयास से दुनिया के कोने कोने में यह हरि नाम पहुंचा रहा था। क्यों? क्योंकि हरि नाम कलयुग का उपाय है। बड़े श्रीमान ने पूछा ये बताओ कलयुग में लोगों का उद्धार कैसे होगा? सूर्य को सब ने क्या था? हरे दशरथ जी राजन, ये राजा कलयुग में दोष ही दोष है। वे दोष बढ़ते जाने हैं, घटते जा रहे हैं। सबके पास टेलीफोन है, सबके पास स्मार्टफोन है। ये स्मार्टफोन का दुरुपयोग भी कर सकते हो। स्मार्टफोन में आप अगर बुद्धिमान हो तो बाबा जी के सारे ग्रंथों को डाल सकते हो, जब मौका मिले पढ़ो। और अगर बुद्धिमान नहीं हो तो आप गणित तस्वीरों को भी डाल सकते हो। एक रूप से देखा जाए माया का प्रभाव बहुत तेज हो गया है आजकल युग में। कृष्ण का चेतन और कृष्ण में चेतन करोगे तो क्या लाभ होगा? मुक्त संघर्ष। तो हम आप सब सौभाग्य है कि आप हरि नाम से जुड़े हो, हमें हरि नाम का पूरा लाभ उठाना है। हमें ध्यान से जाप करना चाहिए, 10 नाम अपराधों से बचना। समझने का प्रयास करना है तो ये है असली संपत्ति, ये है असली संपत्ति। पर ध्यान से जाप करेंगे साथ में शासन का अध्ययन, वह नहीं मानना तो मुझे लगता है आप इतनी मात्रा में शासन को नहीं पढ़ रहे, तो शासन का अध्ययन पढ़ाना चाहिए और पढ़ाओगे तो बुद्धि तेज होगी, तेज बुद्धि से माया का विरोध कर सकते, तो शासन का अध्ययन भी आवश्यक है और साथ में साधु संग ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप इन विधियों का पालन करोगे तो आप सरलता से भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सकोगे। माया देखिए बहुत संसार में कितना क्लेश है, जहां जाओ क्लेश सुनने में आता है। जैसे आजकल भारत में आप किधर भी जाओ एक दूसरे का क्या सुनने आता है, जल नहीं जल नहीं जल नहीं। पानी आता है, कई शहर में यहाँ ऑयल टैंकर्स में पानी को भेजा जाता है। कई स्थान है भारत के यहाँ पानी की चौकीदारी की जा रही है, जैसे सोने की दुकान की ड्यूटी चौकीदारी की जा रही है। चौकीदार खुशी में तो पानी चुरा रहे, तो ये जो भयंकर स्थिति है इसका कारण क्या है? कारण है पृथ्वी पर पाप का बोझ बढ़ते जा रहा है, गाय की सुरक्षा नहीं। जब पृथ्वी पर पाप का बोझ बढ़े तो प्रकृति द्वारा हमें अनेक प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। तो आप पूछना चाहोगे क्योंकि ये इस समय बहुत बड़ी समस्या है और भारत के हर विषय में अखबार में रोज इन पीढ़ी के आप पढ़ते हो, अगर ये सफाई की है तो स्थिति और भी बिगड़ जाएगी। तो इसका उपाय क्या है? भगवद गीता में भगवान कहते हैं तीसरे अध्याय में अन्न की प्राप्ति होती है वर्षा के कारण, वर्षा की प्राप्ति होती है जब आप क्या करो यज्ञ कर चाहते हो कि समाज सुखी बने तो हरि नाम के यज्ञ को पढ़ाओ। हरि नाम एक उपाय है। प्रभा जी कुंभ मेला में गए थे इलाहाबाद में, प्रभा जी ने कहा कि हम कुंभ मेला में अपनी मुक्ति के लिए नहीं आते, हम आते हैं कुंभ मेला में प्रचार करने के लिए। जैसे मैं काम के दिन पर साई स्नान में जा रहे थे तो 6 घंटे लगातार कीर्तन से हो रहा था, लाखों लोगों ने वो कीर्तन सुना। तो भक्तों की रुचि क्या है कि ये हरिनाम की महिमा पढ़े, लोग हरिनाम से जुड़ेंगे, भक्ति शास्त्र को पढ़ेंगे। पिछले 50 सालों में 60 करोड़ रावण की किताबें 80 भाषाओं में लिखी है सारी संसार में पढ़ रहे हैं, जिन ग्रंथों में ज्ञान है। और ये पहली बार है कि ज्ञान प्रमाणिक तरीके से प्रस्तुत किया गया। तो आज के श्लोक का जो संदेश था उसका हमें हम सबको पालन करना चाहिए। आज के संदेश में भगवान के पीला देव कह रहे हैं भक्ति में आप कैसे आगे भक्ति में भक्ति में आगे कैसे बढ़ सकते हो, एक रूप से आप कह रहे देव भक्ति के लिए है और एक रूप से देख रहे हमारे लिए। तो संक्षेप में कपिल देव ने क्या कहा? सदा यादें उल्टे का ज्ञान करा, समय का उपयोग करो क्या करने के लिए, भगवान का गुणगान करने के लिए, प्रजापति के लिए नहीं। वहां जो व्यवहार है सरल होना चाहिए और जागरूकता से रहे और सबके प्रति मित्रता का भाव रखो, द्वेष ईर्ष्या से बचो। पूछते हैं हम ईर्ष्या द्वेष का भाव नहीं रखेंगे, दूसरे लड़के में हम क्या करें, हम भी तो अगर दूसरा व्यक्ति ध्यान पी रहा है तो आप ध्यान क्यों पियो, अगर दूसरा व्यक्ति आपके प्रति ईर्ष्या द्वेष रखता है सह लो। इसी चीज मेरे मातों ने कहा है नाद भी सुनी देना पेड़ से भी ज्यादा सहनशील होना, हमें कभी कभी अत्यंत सहनशील होना पड़ेगा अगर आप ध्यान की प्रवृत्ति करना चाहते हो। अगर आप बौद्धिक संसार में भटकना चाहते हो तो इन दो को ना करो, अगर आगे बढ़ना चाहते हो हमें और ईर्ष्या द्वेष से बचो, बड़ा महत्वपूर्ण संदेश है उसका लाभ उठाइए। हरे कृष्ण रुचि बढ़ेगी प्रयास करने से, जैसे रूप गोस्वामी उपदेश में एक श्लोक में कहते हैं भगवान के नाम जो है अत्यंत मीठे चीनी जैसे, और चूंकि हमारे जीव में विद्या की बीमारी है हमें सब मीठापन महसूस नहीं करता, अगर हम नियमित रूप से जाप करेंगे तो रुचि भी प्रकट हो जाएगी। तो हमें ये नियम का पालन करना चाहिए, इससे रुचि भी बढ़ेगी। अगर हम प्रयास करेंगे ही नहीं तो रुचि कैसे बढ़ेगी। कोई ऐसी सोच नहीं है, अगर हम सोचे देखो बौद्धिक किसान में कितना सुख है, अच्छी मोटर ला रहा है, सबसे गर्लफ्रेंड है, कोई असली सुख नहीं है, ये सुख है नकली सुख है, देखता है सुख देखते बदल में जितने कार्य आप करते हो शास्त्र के विपरीत सबका डंडा को भुगतना पड़ेगा। आने लगा केवल समय का, तो ये सोचे कि आप अगर बौद्धिक संसार में ऐसी योजना कर सकते हैं कि हम चार प्रकार के कष्टों से बचें, कभी संभव नहीं। मैं तो रोज इतने लोगों को मिलता हूँ जो थोड़े बड़ी प्लेस है। और क्वेश्चन
आपने
हार्ड कॉपी को प्रेफरेंस तो बेबी ने भी देता रहेगी, इलेक्ट्रॉनिक में पढ़ेंगे नहीं क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग के माध्यम से आंखों पर भी असर पड़ता है,
नुकसान
पीठ पर भी असर पड़ता है। मैंने एक ईएमजी डॉक्टर है दिल्ली में, उनका बेटा डॉक्टर बन रहा है, तो मैंने उनसे पूछा आपका बेटा ठीक कहा डॉक्टर बन रहा है, आई मैंने कहा क्यों ऐसे भविष्य में सारी आमदन उसमें कैसे लोग कंप्यूटर में पढ़ते हैं आंखें जल्दी से बिगड़ जाती हैं, तो पेपर में पढ़ना ज्यादा आसान है, पर आप अपने स्मार्टफोन में किताबों को रखो, जब भी मौका मिले पढ़िएगा, जब भी मौका मिले भगवान की तस्वीरें को देखना।
आज हमको अपना दुख महसूस होता है, दूसरों का दुख इतना महसूस नहीं, प्रचार भी करते हैं बट दूसरों का दुख इतना महसूस नहीं होता, तो कैसे इसको समझ?
ये बात सच है, हम एडवांस लेवल पर हैं, हम जैसे स्थिति पर हैं, हम केवल अपने स्वार्थ का सोचते हैं, ये बात सच है, पर हमें भगवान हनुमान चालीसा की शिक्षा में श्रद्धा रखते हुए पालन करना चाहिए। जैसे भगवान गीता में कहते हैं सब भक्तों में सबसे प्रिय कौन है जो प्रचार करता है, और यही सोचो हमारे लोग ज्ञान है, हमारे लोग भाव ने जो प्रधान मानता था वासुदेव दत्ता, उसने भगवान से कहा मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूँ, क्या आप सबके पापों का परिणाम मुझे दे दो और मैं सबका पैसों को दूंगा और सबका उद्धार कर दो, तुम्हारे वो भाव नहीं है, पर जो भगवान ने कहा प्रचार करो और हमारे आचार्य ने कहा, हमारे में कोई बुद्धि नहीं है, हम उनके आदेश का पालन करते। चैतन्य महाप्रभु जब वाराणसी में थे तो प्रकाशानंद सरस्वती और एक मायावादी सन्यासी उनकी निंदा कर रहे थे, कहते थे सन्यास ले लिया, हमारे साथ बैठकर वेदांत सूत्र आते उनकी बजाय भगवान जैसे नाच में उठा रहे थे। तो प्रकाशानंद सरस्वती महाप्रभु को मिले, महाप्रभु के दो भक्त उन्हें बड़ा दुख होता था ये सुनकर महाप्रभु की आलोचना कर रही हो, उन्होंने कहा कि आप मिलिए इन्हें सदा की आलोचना करते हैं, तो महाप्रभु जब गए उन्हें मिलने बड़ी विनम्रता के साथ बैठे, यहाँ की लोग पैर धोते हैं मंदिर में प्रवेश करने के लिए और फिर उनका वर्षा हुआ, तो प्रकाशानंद सरस्वती ने कहा आप इतने बड़े विद्वान हो संस्कृत के विद्वान है, हमारे साथ बैठ कर जाप नहीं करते, ये वेदांत सूत्र का अध्ययन नहीं करते, महाप्रभु ने उत्तर दिया मेरे गुरु ने मुझे देखा और कहा तो मूर्ख हो, तुम्हारे में योग्यता नहीं, तुम्हारे में केवल परिणाम की योग्यता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे में इन विषयों पर गहरा रियलाइजेशन नहीं है, अगर हम केवल मानचार्यों भगवान के आदेश के अनुसार ये मानते हुए कि हम मूर्ख नंबर एक है, हमारी बुद्धि कमजोर है, Yes, for a question.
आपने कहा मंगल आरती नाम और तुलसी पूजन करना इसके पीछे का भाव समझना चाहिए, तो इसके पीछे का भाव क्या है?
मंगल आरती नहाते हो, भगवान का दर्शन लेते हो, भगवान की पूजा हो रही हो, ये भगवान और भगवान को ध्यान करनी, इसी अध्याय में आगे जाकर के हृदय भगवान समझाते हैं, जो व्यक्ति ये सोचे ये मूर्ति है ये भगवान थोड़ी है वो सेपरेट है, नदी वो भगवान के भाव को समझ नहीं पा रहा। जो व्यक्ति यहाँ स्वयं भगवान है, राधा माधव के रूप इंद्र भगवान कोई अंदर नहीं, इनकी पूजा हो रही है, दोनों का आने से ये ईश्वर होता है और नारे कोई वर्तन प्रार्थना करने से जाने को नहीं करते।
सादा जीवन
कुछ
कैसे जी
पूजा जीवन सादा विचार बांधने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, परिणाम भी भोगना पड़ेगा। जैसे आप देखते हो लोग कई लोग बैंकों से उधार लेते हैं, करोड़ों रुपए का उधार लिया तो परिणाम भोगना पड़ेगा, जो करोगे वो भरोगे। बाइबल में कहा गया है एज यू सो यू शैल रीप, गीता कहते हैं ये समाप्त हो जाते हैं। ये मत सोचो कुछ भी करोगे कोई देख रहा नहीं है। आगे मोर क्वेश्चन जल्दी जल्दी।
हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच गुरु महाराज, आपने बहुत ही अच्छी तरह से चर्चा किया। गुरु महाराज जैसे देखते हैं कि आप पूरी दुनिया में इतना परिश्रम कर रहे हैं इस हालत में भी, ताकि हम जैसे जो वहाँ के शिष्य या बद्ध जीव है वो सीरियसली ले पाए, लेकिन जैसे प्रवचन में बोल रहे थे कि हम इतने धीट हैं कि इसको ले नहीं पाते, तो गुरु महाराज ऐसे गंभीरता आ सकती कि जो आपके आदेश को बहुत ही गंभीरता से पालन कर सकते।
प्रयास करो, भगवान गीता में कहते हैं जब प्रयास करते मैं सेवा करने के लिए और मैं अगर कुछ कर भी होता उसे मैं दूर करता हूँ, तो सिंसियरली ट्राई करो। लोग ट्राई कर रहे हैं इसीलिए संसार बढ़ते जा रही है, गीता हम सब में है, हम सब सुधर रहे भी, कोई सुधरा नहीं होता तो संसार बंद हो जाती है।
हरे कृष्ण महाराज, हमारे जो भी अपने लेक्चर में बताया कि अहिंसा का पालन करना चाहिए और किसी को कष्ट मत दो, अब हमारा सोसाइटी में देखा गया है कि अगर हम लोग ये फॉलो कर रहे हैं जो नॉन डिवोटीज हैं, अभक्त हैं या जो भगवान के भक्त हैं, वो जनरली डिवोटीज का शोषण करते हैं,
उसका फायदा
उठाता जो भगवान के भक्त है जनरली व्यापार के बिजनेस के अंदर और सोसाइटी के अंदर।
बिजनेस में जो आपको ठीक अच्छा रहता है करो। एक समय एक भक्त ने अमेरिकी लड़की ने प्रभुपाद से पूछा, हाउ डू वी हंबल एंड डिस्ट्रीब्यूट बुक्स। असले लड़की ने पूछा, हमारे सिद्धांत है हम रोज सुनते तो आप हंबल होगी किताब कैसे बांटो, जब आप किताब पढ़ने जाते विदेश में इतना ऐसा नहीं है वहां कीर्तिशन का नाम भी नहीं सुना। तो प्रश्न क्या था, हाउ टू बी हम्बल एंड वी आर लैम्ब इन होम एंड अ लायन आउटसाइड।
मेमना
तो मतलब कि प्रभा ने कहा भक्तों से सम्मान रख रहे हो मेमना का व्यवहार जब प्रचार के लिए जाओ तो शेर जैसे प्रचार करो ये नहीं कि आप घर में शेर बन जाओ बाहर में प्रभु बन आप प्रचार के लिए जाओगे बिजनेस कर रहे थे नहीं बी लाइक अ लायन
माता जी चले
हरे कृष्णा गुरु महाराज महाराज जी आप भी यही कहते हैं गुरु साधु शास्त्र सभी यही कहते हैं कि ईर्ष्या से बचना चाहिए ईर्ष्या से बचना चाहिए बट वो इज अ प्रैक्टिकल टिप फॉर इट
Practical tip is chant regularly, read, and that will help you to develop spiritual qualities. ईर्ष्या करने में अंत में आपका नुकसान है आप इसके विषय में बड़ा सोचोगे इसमें आपका नुकसान है
समझाना प्रभुपाद जी के तात्पर्य को आपने इतने सिंपल तरीके से समझाया जैसे गुरु महाराज आप उदाहरण दे रहे थे कि प्रेगनेंसी रहती है जो उनके प्रभाव के कारण भी आपने उदाहरण दिया सरकारी एम्प्लॉई का या तो श्रवण कीर्तन करेंगे या सेवा करेंगे तो गुरु महाराज जी इसको कैसे सही चेतना में कर सकते हैं बैलेंस बना के काम कार्य कर सकते हैं
क्या मतलब
कीर्तन भी करना है श्रवण कीर्तन भी करना है और सेवा भी करनी है
हम शास्त्र में वही सोचते प्रभा जी उदाहरण दे देते जब आप बीमार होते हो आप डॉक्टर के पास जाते हो डॉक्टर आपको दो चीजें देता है एक दवाई दवाई लोगे परहेज करोगे तो काम नहीं बनेगा अब डायबिटीज है इंजेक्शन लोगे रसगुल्ले खाओगे आपको अगर बीमारी का इलाज करना है तो दोनों का पालन करना पड़ेगा इसी प्रकार प्रभु जी कहते हैं बाकी में भी दवाई लेना परहेज वही दवाई है चैंटिंग रीडिंग परहेज है सेवा दोनों आवश्यक है आप बाबा जी ग्रंथ को पढ़ो उसमें हर प्रश्न का उत्तर है
भक्ति में हम कभी भी आगे बढ़ते जाए दूल्हा और कभी भी नीचे ना आए कोई फ्यूचर है उसकी क्या हमें सावधान रखनी चाहिए
हमारा लक्ष्य होना चाहिए हरि नाम में रुचि बढ़े हरि नाम के प्रति आकर्षण बढ़े साधन के प्रति आकर्षण बढ़े नम्रता का भाव हो ये हमारा भाव होना चाहिए जैसे कि शरीर आपका गर्म हो जाए तो आपको लगता है बुखार हो रहा है तो उसी प्रकार अगर हम देखें कि हरि नाम में रुचि नहीं बढ़ रही साधु संगत में रहने की रुचि नहीं पड़ रही हमें घबरा जाना चाहिए और गुरु के उत्तम भक्त से पूछना चाहिए हमें हम क्या करें ओके लास्ट थ्री क्वेश्चन
हरे
आपने बताया कि समय को प्रॉपर यूज करना चाहिए, सही यूज करना चाहिए समय को, तो हमें मुझे कुछ फील होता है कि इस लगता है कि समय से बीत जा रहा है, तो मैं भक्ति सीरियस करने सीरियसली कर नहीं पा रहा हूँ, तो मैं इस सकता है भक्ति
कर रहे हो, प्रयास है और सुधारे। You should never become complacent. मैं कभी ये नहीं सोचा कि हम पहुंच गए वहां पे आते हैं, बच्चे और सुधारा। जैसे कि नरोत्तम दास ठाकुर अपनी रचनाएं में कहते हैं, इनमें कोई प्रेम नहीं है भगवान के लिए। विश्वनाथ का विराज जी कहते हैं, मेरा नाम भी मत लो, नाम लोगे तो सारे को समाप्त हो जाएंगे। तो भक्त को यही सोचना चाहिए कि मेरे में तो भगवत प्रेम नहीं है, पर प्रयास करते रहना चाहिए। ओके
सर, एक बेसिक क्वेश्चन है हरे कृष्ण सर, चैंटिंग में कंसंट्रेट करने के लिए ताकि मन उसमें लगे, उसका कुछ थोड़ा तरीका बता सकते हैं? क्योंकि जब करते हैं तो ध्यान इधर उधर की ओर डाइवर्ट हो जाता है।
कुछ खबर ये है वहां डाइवर्ट होता है, उसकी चिंता मत करो, जाप करो और सुनो, बस ऐसे मन स्थिर हो जाएगा। कलियुग में एक छूट मिली हुई है, मन भटक गया तो भटक गए, तो मन भटक गए, मैं अभी जाप नहीं करता, मन स्थिर हो जाएगा जब जाप करो, तो वो दिन कभी नहीं आएगा। जाप करोगे तो मन स्थिर होगा, ये नहीं कि पहले मन स्थिर होगा और फिर जाप करोगे।
उधर उधर
इधर है महाराज, अपने दो क्वेश्चन, दो जैसे अपने चाणक्य पंडित जी का बोला कि हम सारी दौलत दे के भी नहीं हम खरीद सकते टाइम को जो निकल गया, और उसके अलावा अपने खटवंग महाराज का बताया कि एक पल भी उन्होंने भगवान की भक्ति करी और उनका मन आ गया, तो जल्दी हम जैसे आपने बताया कि हम बहुत भीड़ है, इतना कुछ रोज सुनते हैं, इतना रोज पढ़ते हैं, तो इतने सालों से हम इस कॉन में भी बुकों में भी कोशिश कर रहे हैं, पर फिर भी हम जैसे खटवंग महाराज हैं और जो चाणक्य पंडित जी कह रहे हैं उस चीजों को अगर हम नहीं मान पा रहे कि हम हो सकता है हम अभी यहाँ से जा रहे हैं ऑफिस में पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, हमें भगवान को इम्पोर्टेंस प्रायोरिटी नहीं दे रहे, तो वो प्रायोरिटी के लिए हम संग जो कर रहे हैं वो क्या पर्याप्त नहीं है, हमें और करना चाहिए, या किस तरह से महाराज बड़े हम इस विषय में?
बिना शंका के भगवान के धाम जाओगे, तो ये जो नियम है उनका पालन करते जाओ और खुद ही खुद प्रोग्रेस भी करोगे। यस
एक्चुअली आपने बार बार कहा कि हमें हर चीज रेगुलर बेसिस पे हीलिंग हुई, चैटिंग का भी आपने कहा और पढ़ने के लिए रेगुलर बेसिस, तो अक्सर होता है कि हम रेगुलरिटी को मेंटेन करना वो तो मुश्किल हो जाता है, सेम टाइम भी और मतलब उतना टाइम निकालना भी मुश्किल हो जाता है।
हर चीज मिलता लाइफ में, या मान लो भगवान को बोलने का प्रयास करे वो भी मुश्किल है, क्योंकि उसका भी बड़ा भय कंट्री ना होगा, तो ये जो मुश्किल पर मिलता है ये मीठा है। स्ट्रगल फॉर कृष्णा इज स्वीट। एक समय प्रभुपाद जी जब उसमें जा रहे थे, वह कह रहे थे आपका स्वास्थ्य की आराम करो,
Good question.
Good question. 50%, but it may not be practical today. So just do whatever is practical. Keep what you need for yourselves and donate as much as you can. So no fixed percentage, but it's going to vary from city to city. Give to Krishna whatever you can, as much as you can.
Go for the can and the requirement of the family, it goes up and up. So you just
yeah, that's a good point. Well, if your motto is simple, then high thinking, then it will become easier. That's right. Whenever the body is the Amrish, but he's a rich man when you see one of them. So it all depends. Okay. Yeah.
Aisha.
Mike.
Your question is. Aisha, question is that you have to say that you have to simplicity maintain. But just a bar, when you have to say that, you have to say that delusions are not.
So,
ऐसे
में भी
कैसे सिंपलिसिटी को
प्रैक्टिकली मेंटेन किया जा सकता
है? तो क्वेश्चन
क्या है? कैसे उतना ही सिंपल है? मैं का क्वेश्चन हाँ जी मैं का क्वेश्चन तो बढ़ते जाएगा कलयुग में खुद ही बढ़ते जा रहा है तो हमें इसका विरोध करना है जैसे कि सर्दी में ज्यादा ठंड हो तो ज्यादा घना कपड़े पहनते तो इसका विरोध करने का एक ही उपाय है चैंटिंग रीडिंग एसोसिएशन वन सॉल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम्स ओके ओके एनी मोर क्वेश्चन
हमें
ये नहीं सोचना चाहिए हमें भक्ति में जुड़े हैं तो सारे अनंतता तुरंत ही नष्ट हो जाएंगे अनंतता तुरंत नष्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है हमें प्रयास करते जा रहे हैं Keep trying. Don't give up. People give up, but don't give up. That's all. And then success is guaranteed. Okay, last question.
Thank you so much. जैसे हम गृहस्थ आश्रम में हैं थोड़ा टाइम का कंस्ट्रेंट रहता है तो हमें जो मॉर्निंग प्रोग्राम है वो जैसे टेम्पल में फॉलो करते हैं वैसे ही करना चाहिए या हम रीडिंग
नहीं कर सकते तो अब्रिज्ड वर्जन जैसे किताबों का अब्रिज्ड वर्जन होता है अब्रिज्ड वर्जन अभी आदि में
Thank you for listening to His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj. For more information, please visit gkgoswami.com.